अंधेरे में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व की तलाश। वशिष्ठ नु। अंधेरे में शीर्षक कविता मुक्तिबोध के जीवन के आखिरी दिनों में लिखी गई थी। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक लंबी कविता है। इस कविता का केंद्रीय तथ्य अभिव्यक्ति की पूर्णता और पूर्ण क्रांतिकारी व्यक्तित्व की तलाश है। मुक्तिबोध का गहन चिंतन गहन और विराट था। उन्होंने समाज की दुर्दशा, पीड़ा, हाहाकार और व्यवस्था की तानाशाही एवं बर्बरता को देखा ही नहीं, भोगा भी था। इन समस्त अनुभवों को उन्होंने कविता ही नहीं अन्य विधाओं में भी व्यक्त किया है। लेकिन उन्हें यह लगातार महसूस होता रहा कि बहुत कुछ कह लेने के बाद भी बहुत कुछ कहना शेष रह गया है। इसी अभिव्यक्ति की तड़प भरी कोशिश में उनकी लंबी कविताएँ हो जाती हैं, लेकिन उन्हें वह लंबी कविताएँ भी अधूरी लगती थी। इस बात को उन्होंने अपने लेखों, कहानियों और कविताओं में बार बार कहा है। एक लंबी कविता का अंत शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा है, इनोटेड कामा, कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। मुझे उसकी लंबाई चौड़ाई को देखकर भय लगता है, इनोटेड कामा बंद। इसी क्रम में वह लिखते हैं कि इनोटेड कामा, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएँ नहीं लिख पाता और जो छोटी होती हैं व्यवस्थित छोटी न होकर अधूरी होती हैं, इनोटेड कामा बंद। इस बात को वह अपनी कविताओं में भी कहते हैं। यहाँ चकमक की चिंगारियां के कुछ अंश देखें। मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में सभी प्रश्नोत्तरी की तुंग प्रतिमाएं गिराकर तोड़ देता हूँ हथौड़े से, कि ये सब प्रश्न कृत्रिम और उत्तर और विछलमय। कि मैं अपनी अधूरी दीर्घ कविता में उमग कर जन्म लेना चाहता फिर से, कि व्यक्तित्वांतरित होकर नए सिरे से समझना और जीना चाहता हूँ सच। नहीं होती कहीं भी खत्म कविता, नहीं होती कि वह आवेग त्वरित कालयात्री है। यह अभिव्यक्ति की पूर्णता की तलाश मुक्तिबोध की रचना यात्रा में अनवरत जारी रहती है और यही अधूरापन उन्हें पुनः और पुनः रचना के लिए प्रेरित रहता है। इसी प्रकार की पूर्णता की तलाश आगे की कन्हाई ने प्यार किया में दिखाई पड़ती है। अंधेरे में कविता का नायक अपनी कहानी पूरी कविता में आत्मकथात्मक शैली में सुनाता है। पूरी कविता एक स्वप्न कथा के रूप में चलती है। यह स्वप्न कथा हवाई नहीं है, इसमें यथार्थ और विचार भी, इसीलिए यह फैंटेसी अत्यधिक जटिल है। इस जटिलता का कारण यह भी है कि इसमें स्वप्न के भीतर स्वप्न चलते हैं। यहाँ तक कि जब स्वप्न भंग हो जाता है तब भी रचनाकार स्वप्न में ही रहता है। एक स्वप्न से निकलकर वह दूसरे स्वप्न में चला जाता है। कविता का आरंभ भी एक फैंटास्टिक चिंतन से ही होता है। इसमें रहस्यमय दृश्य, जादुई कल्पना, दृश्यात्मक बिंब, श्राव्य ध्वनियाँ भरी हुई हैं। कविता की तलस्मी घोर से शुरू होती है। जिंदगी की कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई लगातार। उस चक्कर लगाने वालों को पैरों की आवाज़ बार बार सुनाई पड़ती है। उसके होने का अनुभव लगातार होता रहता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तभी दीवार के फूले हुए पलस्तर गिरते हैं, चूने भरी रेत गिरती है और स्वयमेव एक चेहरा बन जाता है। नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं माना जा नहीं जाना जाता है, कौन मनु। फिर तरसवी खोखा शिला द्वार धड़ से खुल जाता है और इसमें से बाहर आता है रक्तालोक स्नात एक पुरुष जिसका ललाट तेजो प्रभामय है। उस रहस्यमय व्यक्ति को देखकर कवि को लगता है कि वह अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। वह मेरी संभावना का परिपूर्ण आविर्भाव है, वह आत्मा की प्रतिमा है। किंतु मन में यह प्रश्न उठता है कि वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने हैं, उसके वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया है, उसने कारावास दुख क्यों झेला, उसे रोटी कौन पहुंचाता है, पानी कौन देता है, फिर भी उसके मुख पर मुस्कान क्यों है और वह प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है। इसी के बाद कवि को लगता है कि मैं किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में अचेतन स्थिति में गिरा दिया गया। ऊपर आने वाले मनु को डॉक्टर रामलीला शर्मा कामायनी के मनु से जोड़ते हैं और डॉक्टर नामवर सिंह उसे जगत की गलियों में फटे हाल घूमता सामान्य मनुज कह मानते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी इन मनु को मुक्तिबोध की पूर्ण अभिव्यक्ति मानते हैं। वह इसे कामायनी के मनु से अलगाते हुए लिखते हैं कि नोटेड कामा, मुक्तिबोध का यह मनु कामायनी के मनु से कितना भिन्न है यद्यपि अवयव के दृढ़ मांसपेशिया वाला व्यक्तित्व यहाँ भी है। तेजो प्रभा में उसका ललाट तेघ गौरव वर्ण दीप्त दृघ सौम्य मुख भव्य अजान भुज। हमारे अपने देश काल को देखते हुए यह संस्कृति पुरुष मध्यवर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। कामायने का मनु देव संस्कृति से आकर पुनः आनंद लोक में चला जाता है। इस लोक में भी वह स्वच्छंद विहार करता है। अंधेरे में का मनु मन के कारावास तिलक्ष्मी खो से बाहर निकलकर जनता में घुल मिल जाता है। बाहर से आकर कमजोरियों से लगाव रखने वाले व्यक्ति को दुर्गम पर्वत संधि पार करने का आमंत्रण देता है। उसे अपने कमजोर घुटनों को सहलाकर पैरों से धरती का फैलाव महसूस करने पर विवश करता है। कविता के दूसरे चरण में काव्य नायक आधी रात में द्वार पर साकल बजने की आवाज सुनता है। उसे लगता है कि कोहरे में द्वितीय प्रेम भरा जो चेहरा है उसे मैं पहचानता हूँ। यह वही व्यक्ति है जो मुझे तिलस्मी खो में दिखा था। उसके चेहरे पर खिलती है सुबह और गाले पर पठार की चट्टानी चमक है। उसे देख प्यार मरता है अनायास। लगता है दरवाजा खोल कर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे। लेकिन उसे लगता है कि मैं तो भयानक खड्डे के अंधेरे में छत विछत पड़ा हुआ हूँ। इस मध्यवर्गीय काव्य नायक को अपनी कमजोरियों से मोह है, इसीलिए उस प्रिय से मिलने से वह कतराता और डरता है। उसे लगता है कि वह प्रिय पर्वत संधि के गहवरों को पार करके शिखरों पर पहुंचने की प्रेरणा दे रहा है। यहाँ यह संशयग्रस्त हो जाता है। वह उठकर दरवाजा खोलता है और पैरों में धरती का फैलाव, हाथों में दिशाएं, सांसों में दुनिया और मस्तक में आकाश को अनुभव करता है। उसकी आत्मा में भीषण सचित वेदना जलकर धड़कने लगती है। विचार सहचर हो जाते हैं। रात का पक्षी जैसे कहता है, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में शहर में, जिसको तू खोज अब उसका तू शोध कर। वह मेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, वह तेरी गुरु है, गुरु है। तीसरे खंड काव्य में काव्य नायक कहता है कि यह स्वप्न है या जागृति। वह सोचता है कि अपने सिविल लाइन्स के कमरे में जिस भूत जैसी आकृति को मैं देख रहा हूँ, क्या वह मैं हूँ? यह गहन मानसिक द्वंद्व और आत्मनिरीक्षण का भाव का क्षण है। रात के 2 बजे हैं। जंगल से सियारों के हो सुनाई पड़ती है। किसी असंभव घटना का भयानक संदेह होता है। इसी भी तौल साय दिख जाते हैं। घटना में मोड़ आता है। सामाजिक संघर्ष का आरंभ होता है। स्तब्ध नगर में प्रोसेशन मध्यरात्रि के अंधेरे में एक बैंड दल आता है। संगीन धारी फौजी चल रहे हैं। गैस लाइट की पंक्तियाँ हैं। कोई जुलूस है जिसमें अपार्थिव चेहरे हैं। कभी सोचता है कि क्या शोभा यात्रा कृषि मित्र दल की है। उस जुलूस में टैंक दल, मोर्टार आदि के साथ कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल और कई सेनापति सेनाध्यक्ष हैं। उनके साथ कई प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, कमीगण, मंत्री, उद्योगपति, विद्वान, शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद सब शामिल हैं। तात्पर्य यह है कि इनके चरित्र में कोई फर्क नहीं है। अंधकार के वास्तविक कारण यही लोग हैं जो दिन में प्रच्छन्न और रात में खुलेआम अंधेरी शक्तियों अर्थात पूंजीवाद और फासिज्म के साथ होते हैं। ये अन्याय का भी कभी मौन और कभी मुखर समर्थन करते हैं। द्रौपदी के चीरहरण की तरह बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अन्याय के मौन समर्थन और प्रकारांतर में उसमें शामिल होने की समस्या भूल गलती में भी उठाई गई है। जहां सत्ताधारी वर्ग से नाभिनालबद्ध दरबारी सुल्तान के इरादों को समझते हुए एकदम खामोश है। इनमें शायर, सूफी, मनसबदार, दार्शनिक, विद्वान, इतिहासकार, सरदार और सेनापति सभी चुप हैं, खामोश, सब खामोश। मनसबदार, शायर और सूफी अलगजाली, इब्ने सीना, अलबरूनी, आलिम फाजिल, सिपहलसार सब सरदार हैं, खामोश। भूल गलती और अंधेरे में कि बुद्धिजीवियों में फर्क इतना है कि भूल गलती में वे खामोश हैं और अन्याय का समर्थन कर रहे हैं, और अंधेरे में उनकी अन्याय में सक्रिय भागीदारी है। इतने में उनमें से कुछ लोगों ने काव्य नायक को देख लिया और उनकी आंखों में रोष से भर उठी है। सड़क पर एक शोर उठा, मारो गोली, दागो साले को। एकदम दुनिया के नजरों से हटकर छुपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, वह जान गया, वह सब मार डालो, उसको खत्म करो एकदम। उसका गुनाह यह है कि पुलिस से लेकर पत्रकार, विद्वान और अपराधी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सच्चाई को वह जान गया, इसलिए हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। अपराधी को अपराध करते देख लेना गुनाह है, इसलिए तमाम प्रत्यक्षदर्शियों की हत्या हो जाती है। बुद्धिजीवियों का स्वार्थी और दोंगला चरित्र यहाँ बहुत साफ प्रकट होता है। आगे उसे लगता है कि सेना ने सब ओर से सड़कें घेर ली हैं। यह सब किसी जनक्रांति के दमन के लिए मार्शल ला है। कोई लगातार इसका पीछा कर रहा है और वह भाग रहा है। फिर वह उस भयंकर भगत के पास पहुंच जाता है जहां तमाम गरीब वंचित रहते हैं। आज वहां रहने वाले पागल की बुद्धि जागृत हो गई है और वह ऊंचे गले से कोई पद या गान आत्मबोधमय ढंग से गा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। अब तक केवल पेट भरते रहे, वे बेचारी के सहयोगी बनते रहे, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को घर से निकाल दिया, स्वार्थों के कुत्ते पाल लिए, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, आदर्श खा गए। यहाँ कवि इस विडम्बना के संकेत करता है कि जो सच बोलता है वह चालाक, घाक और स्वार्थी लोगों की दृष्टि में पागल कहलाता है। फिर इसे लगता है कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बरगद का एक पत्ता उसके कंधे पर गिरता है। वह सोचता है कि यह क्या किसी की चिट्ठी है, उसमें क्या संकेत है। वह दम छोड़कर भागता है और धां धां बंदूकें चलती हैं। इस क्रम में वह भागता हुआ अंधेरी गुफा में पहुंच जाता है। वहां खोह के सांवले जल में चमकते पत्थर, जलप्रपात और चमकती किरणें हैं। उसे लगता है कि ये मेरे ही अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष यहाँ भरे पड़े हैं। ये विचारों के रक्तिम अग्नि के मड़ी हैं, किंतु मैंने इन्हें गुहावास, एकांत पीड़ा देकर लोकहित और जनोपयोगी से वंचित कर दिया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब योजना ही तय है। छठे खंड में पुनः दृश्य बदलता है। सुनसान चौराहों पर घंटाघर दिखाई पड़ता है जहां काल टहलता है। भयानक सिपाही है, टैंकों का उंगता दस्ता है। वह दम छोड़कर भागता है और जादुई प्रभाव से खिंचा हुआ तिलक की मूर्ति के पास पहुंच जाता है और फिर वह मूर्ति जीवंत हो हिलती सी लगती है। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में बिजली के फूल सुलगने लगते हैं, लेकिन यह क्या, भव्य ललाट की नासिका से लाल लाल रक्त पटने लगता है, मानो अतिशय चिंता के कारण मस्तिष्क कोश ही फूट पड़ा हो। वह सहसा चिल्ला उठता है, हाय हाय पिता पिता, ओ चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं, जिंदा, चिंता क्या है। वह मूर्ति के पैरों से चिपक कर रुआंसा हो जाता है। आत्मा में खून का तालाब बहता सा लगता है। छाती के भीतर विवेक दिखा सरंदा चलाने लगता है। वसूले से लगता है कि कोई उसका निजत्व ही छीले जा रहा है। फिर उसके भीतर एक भारी भयानक हठ, भारी जिद उठ खड़ी होती है। फिर बंदूक चलती है। वह थक कर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि सर्दी में बोरे को ओढ़ कर कोई कांप रहा है। अरे वह गांधी जी हैं, इतने पंगू। तभी गांधी जी कहते हैं, दुनिया न कचरे का ढेर के जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बाग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोदे में कर्णीली कण कण गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। तभी लगता है कि उस आत्मा के पिंजर और मूर्ति की ठठरी के कंधों पर बोरा और बांह में बच्चा है। आश्चर्य होता है कि यह शिशु कैसे। उस द्वित पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। और कुछ कहने को होता है, तभी देखता है कि वहां कोई नहीं है। बालक चुपचाप गले से लिपटा हुआ है, उसका स्पर्श कोमल और प्यार भरा है। ससावर होने लगता है। वह बच्चे को चुप करने के लिए लोरी गाता है, किंतु वह चुप नहीं होता। फिर भी कवि का मन बहुत प्रसन्न होता है। उसका मन उत्साह से भर जाता है। कुछ देर बाद बच्चा सहसा गायब हो जाता है और कंधे पर वजनदार बंदूक आ जाती है। यह शिशु भविष्य और आगामी पीड़िता जन संघर्ष का प्रतीक है। वह आगे बढ़ता है और वहां जमीन में खून में लथपथ एक आदमी मिलता है, जो एक कलाकार था, जिसे संदेहास्पद समझकर मार दिया गया था। उसके मरने से एक युग मर गया। वह संभवतः गांधी जी थे। उसे लगता है कि मुझे भागना छोड़कर नए नए सहचर तलाशना चाहिए। यह सोचकर वह जीने से उतरा और एकाएक विद्रूप रूपों से गिर गया। भयानक आकार उसे घेर लेते हैं, जिनकी पकड़ मशीन सी है। वे उसे आदताई सत्ता के सामने पेश करते हैं, जहाँ उसे प्रताड़ित किया जाता है। चाटे से कनपटी टूट जाती है, गाल की त्वचा उखड़ जाती है, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। उसे अंधेरे कमरे में स्टूल पर बैठाया जाता है, जहाँ शीश की हड्डी तोड़ी जा रही है। शीश का मोटा अस्थि कवच निकाल कर देखा जा रहा है कि मस्तक यंत्र में कौन से विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन से सिरा में कौन सी धक धक और कहाँ विस्फोटक सामान है। वह कहते हैं कि संस्था के मंत्री को खोजो, शायद इसका ही नाम आस्था हो। उस टुकड़ी के सरगना की आत्मा कहाँ है, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थॉरली। पीठ पर चाबुक की मार के बावजूद उसकी आत्मा बहुत कुशल है। सारे बंधनों के बावजूद उसका मन बहुत दूर निकल जाता है और पत्र के रूप में चुपचाप एक फटे हुए मन की जेब में गिरता है। उसे लगता है कि उसका यह आत्मविस्तार बेकार नहीं जाएगा। उसे सहानुभूतिपूर्ण कोमल स्वर सुनाई पड़ते हैं, हम कहाँ नहीं हैं, सभी जगह हैं हम। वह रिहा कर दिया गया, लेकिन कई छाया में उसका पीछा करते रहते हैं। उसे लगता है कि मुझे अब साथी खोजने होंगे। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर उसे बिजली की नंगी लताओं से झरते सफ़ेद नीले मोतियाई चंपई फूल दिखते हैं। वह जमीन पर पड़े उन चमकीले पत्थरों को चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करने लगता है। ये मणिरत्न स्वरूप है, यहाँ बिजली के फूल क्रांति के प्रतीक हैं। वह अनुभव करता है कि मेरा असंतोष गहरा है और शब्दाभिव्यक्ति का अभाव है। काव्य चमत्कार रंगीन तो है, लेकिन ठंडा। इससे काम नहीं चलेगा, मेरे मस्तक में गहरा तनाव है। उस मस्तक कुंड में सचित वेदना जल रही है, इसलिए उसे लगता है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी हमको नीली झील की लहरीली थाएं, जिसमें प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। उसको धसना ही होगा झील के हिमशित सुनील में। यह अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर मठों और गढ़ों को तोड़ने का भाव सिर्फ शब्दाभिव्यक्ति या काव्याभिव्यक्ति तक सीमित न होकर अभिव्यक्ति योग्य विचार को कर्म में रूपायित करने से है। खतरे विचारों को व्यवहार में बदलने पर ही उपस्थित होते हैं। दुर्गम पहाड़ों के पार जाकर रचनाकार शोषित समुदाय को संगठित करना चाहता है, जहाँ अरुण कमल क्रांति का प्रतीक है और जादुई झील जनसमूह का। इस संकल्प के बाद सातवें खंड में वह देखता है कि आकाश में चांद उगाया है। फिर वह दम छोड़कर भागता है और देखता है कि टूटी हुई भीत के उस पार कहीं बहस गर्म है। दिमाग में जान और दिलों में दम है, सत्य से सत्ता का युद्ध जारी है। लेकिन मेरी सारी कमजोरियां मेरे साथ हैं। आगे चलने पर जनसमूह मिलता है, जिसमें बालक युवा हर उम्र के लोग हैं, जिनके भीतर आक्रोश की आग जल रही है, उनकी मुट्ठियां बंधी हैं। उसे लगता है कि यह जनसमूह उसी के विवेक रत्नों को लेकर सोत्साह बढ़ रहा है। उसे लगता है कि किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाले में अपने से दुकेला। यह बुद्धिजीवी वर्ग की विसंगति है कि वह अपने विचारों पर अमल नहीं कर पाता, उसे व्यवहार रूप में जनता ही उतारती है। वह गलियों में भागता है, तभी उसे कोई एक पर्चा देता है, इसमें उसी के विचार और अनुभव जगमगा रहे हैं। हर तरफ उसे जनसमूह दिखाई पड़ता है, उसमें एक दृढ़ता है। वह एक निर्णायक क्रांतिकारी स्वर में कहता है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का आबादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को। कविता के आठवें खंड में भीषण दृश्य उपस्थित होते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था का दमनकारी और आतंककारी रूप नग्न रूप में दिखाई पड़ने लगता है। नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई। ये पंक्तियां बार बार दोहराई जाती हैं। जितना दमन है उससे उग्र जनाक्रोश और क्रांति, लेकिन आश्चर्य यह है कि सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है मात्र किंवदंती। रक्त पाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग, नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे, प्रश्न की उथली सी पहचान राह से अनजान वाक रुदंती। समाचार पत्रों के स्वामियों के स्थूल मुख भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए हैं। बौद्धिक वर्गकृत दास हो गया है और उसकी श्रद्धा नपुंसक हो गई है। बच्चों बूढ़ों सब में क्रांतिकारी चेतना आ गई है। एक एक वस्तु, एक एक प्राणाग्नि बम और प्रक्षेपास्त्र बन गई है। सब में इतना उत्साह है कि वे शून्यकाल से होते हुए दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए तत्पर हैं। लकड़ी के चक्कों पर लोहे की लाल लाल पट्टियां चढ़ाई जा रही हैं। आत्मा के चक्के पर भी संकल्प शक्ति के लोहे के ज्वलंत टायर चढ़ाए जा रहे हैं। हर तरफ भीषण युद्ध जारी है। फिर स्वप्न भंग होता है और वह अपने आप को अकेला पाता है। तभी किसी सुंदर प्रेमिका की तस्वीर उभर आती है और उसके चुंबन की याद आ जाती है। वह स्फूर्ति से भरा जाता है। यहाँ मुक्तिबोध की यह प्रेमिका क्रांति का ही प्रतिरूप है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नोटेड का वहाँ विद्रोह और कविता का ऐसा संश्लिष्ट सुकुमार रूप अपने में विशिष्ट है। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की संवेद कोमलता एक साथ मिलती है, वह कुछ वैसा ही रचा मुक्तिबोध में नोटेड का बंद हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। वह सोचता है कि क्या सचमुच कोई प्रेमिका मिलेगी। उस अज्ञात प्रेमिका के याद से ही कमरे में सुबह की धूप आ जाती है। प्रेम किसी जादुई प्रभाव को महसूस करते हुए कृष्ण बिहारी नूर ने लिखा था, मैं तो अपने कमरे में उसके ध्यान में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। इस कविता का अज्ञात प्रेमिका का नाम डॉक्टर रामलीला शर्मा ने अग्नेशका बताया, किंतु डॉक्टर नंदकिशोर नवल ने उस प्रेमिका का नाम नातालिया बताया और यह प्रमाण देकर बताया कि अग्नेशका मुक्तिबोध को पिता मानती थी, जिनका उन्होंने कन्यादान किया था। और यह कविता अग्नेशका के भारत आने से पहले लिखी जा चुकी थी। हर तरफ एक चुंबकीय आकर्षण महसूस होता है। वह आकर गैलरी में खड़ा हो जाता है। तभी देखता है कि सामने भीड़ में वही व्यक्ति चला आ रहा है जिसे मैंने गुहा में देखा था। धड़कते दिल से वह उसे पुकारने के लिए मुंह खोलता है, तभी वह भीड़ में खो जाता है। वह कोई और नहीं, वह अनखोज समृद्धि का परम उत्कर्ष परम अव्यक्ति मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है गुरु है। कवि नायक का कहना है कि वह क्रांति पुरुष कभी मेरे पास बैठा नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलश्मी खो में उसे एक बार देखा था। वह जगत की गलियों फटेहाल घूमता है, उसमें विद्युत से लहरें हैं, गतिशीलता है, ज्ञान के तनाव से उद्विग्न है। लोगों को क्रियाशील बनाने के लिए उसके पास अतिशय प्रेम है। वह जो फटेहाल रूप में है वह कोई और नहीं परम अभिव्यक्ति है। वह कहता है कि मैं हर गली हर सड़क हर चेहरे में उसकी तलाश करता हूँ, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। मुक्तिबोध यहाँ उस प्रबल और अनिवार्य अभिव्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आत्मसंभवा है, अंतर्मन या आत्मा की उत्पत्ति है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि नोटेड कामा यह आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति क्या है। आत्मसंभवा आत्मा से उत्पन्न आत्मसंभवा मुक्तिबोध की ईमानदारी को रेखांकित करती है। जनक्रांति की पक्षधरता भीतर से उत्पन्न होती है। कुकुरमत्ता उगाए नहीं उगता। मुक्तिबोध न तो सौंदर्य शास्त्र पर राजनीति का रंग चढ़ाते हैं न राजनीति पर सौंदर्य शास्त्र का। इस कविता में दोनों का अद्भुत सामंजस्य है। यूनाइटेड कामावन आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर श्रीमती गिरीश सरतोगी का यह कथन महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड कामा यहाँ मुक्तिबोध की बेचैनी और रचनात्मक ईमानदारी उल्लेखनीय है। जीवन के गहरे अनुभवों और संघर्षों से गुजरते हुए वह अंतहीन रचनात्मक कोशिश अर्थात परम अभिव्यक्ति उसकी तलाश और जीवन एवं समाज में क्रांति की चुनौती को एक प्रकार से कवि कर्म के रूप में स्थापित करते हैं। यह रचनात्मक खोज सहज नहीं है, न यह कि किसी औपचारिक प्रयत्न से प्राप्त हो सकती है, न गैलरी से झांक कर अंधेरे में आरंभ से अंत तक तलाश जारी रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तलाश पूर्णता की है और इसके लिए ज्ञान को संवेदना और कर्म बदलने की अपेक्षा है। यहाँ आकर मुक्तिबोध ने कवि के अस्तित्व को उसकी पहचान को सामाजिक आइडेंटिटी में मिला दिया है। मुक्तिबोध और अंधेरे में, अंधेरे में के विषय में श्रीकांत वर्मा का मानना है कि मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविता अंधेरे में अपने युग की घटनाओं से नहीं बल्कि उसकी बनावट से सामना करती है। इस युग में वे सभी खतरे हैं जो कि उसे कविता की जगह उपन्यास से परिणत कर सकते थे। अंधेरे में के अनुभव की समग्रता चरित्रों और घटनाओं में बिखर कर स्थूल अर्थों में एक यथार्थवादी उपन्यास बन सकती थी। मुक्तिबोध ने इस खतरे को पहचानते हुए अपने अनुभव को और भी गुमनाम होने दिया। वास्तव में अंधेरे में इस युग के यथार्थ की काव्य परिणति है। कहावत मुक्तिबोध, संपादक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अंधेरे में कविता के काव्य नायक के रूप में आलोचकों ने स्वयं मुक्तिबोध को देखा है, किंतु श्रीकांत वर्मा की दृष्टि में नोटेड कमा वह काव्य नायक बेचैन, खंडित, जर्जर और व्यग्र हिंदुस्तान है। यह स्वाधीनता के बाद का भारतवर्ष है जिसका शरीर और मन छत विछत है। उसके चेहरे पर इतिहास की झुर्रियां, सीने पर गोली की घाव और अंतरात्मा में बेचैनी है। हिंदुस्तान केवल नक्शे में नहीं कविता में भी है, और शायद कविता का हिंदुस्तान ज्यादा सच है। इस हिंदुस्तान को पहचानने में हिंदी कविता के लगभग 50 वर्ष लग गए हैं, और जब इस प्रश्नाहत मनु को पहचाना गया तब तक देश सचमुच ही अंधेरे में जा चुका था। मुक्तिबोध की सार्थकता इसमें है कि उन्होंने इतिहास के प्रश्नों को केवल इतिहास का प्रश्न कहकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्हें कविता के प्रश्नों में बदल दिया। इन्होंने कामाबंद मुक्तिबोध, संपादक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस कविता में मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष भी प्रकट हुआ है, किंतु उस आत्मसंघर्ष के साथ सामाजिक संघर्ष भी जुड़ा है। इस विषय में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि इनोटेड कमा जाहिर है कि सामाजिक संघर्ष में भाग लेकर इस आत्मसंघर्ष को निर्णायक दिशा की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इसीलिए मुक्तिबोध की अधिकांश कविताओं का अंत किसी हड़ताल या जन आंदोलन अथवा किसी जनक्रांति के अभाव से होता है, और काव्य नायक कभी तो इस आंदोलन या क्रांति का दृष्टा मात्र होता है और कभी उसका प्रेरक। इस तरह आत्मसंघर्ष की परिणति अंततः सामाजिक संघर्ष में होती है। इन्होंने कहा कविता के नए प्रतिमान अंधेरे में पुनश्च। वैसे इस कविता का मूल तथ्य उन्होंने अस्मिता की खोज माना है। इस कविता में जो अंधेरा है वह वातावरण की भयावहता को तो ध्वनित करता ही है, वह अंधेरी शक्तियों का भी प्रतीक है। कई लेखकों ने इस बात को संकेत किया है कि अंधेरे में की रचना प्रेरणा के रूप में मुक्तिबोध का सामना जीवनानुभव रहा है। इसमें जो हिंसा और दमन के दृश्य हैं वे उन्होंने नागपुर में देखे थे। शमशेर बहादुर ने इस बात की चर्चा की है कि नागपुर में एम्प्रेस मिल में जब मजदूरों पर गोलीकांड हुआ था, उस समय उन्होंने अपनी आंखों से घटनास्थल पर मजदूरों का सिर फूटना और रक्त बहाना देखा था। शमशेर जी इसीलिए अंधेरे में जैसी सशक्त और मार्मिक रचना के पीछे नागपुर निवास के बहुत सारे संदर्भों की तीखी प्रत्यक्षानुभूति को मानते हैं। विष्णु चंद्र शर्मा ने भी कहा है कि नया खून के रिपोर्टर के रूप में मुक्तिबोध उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। अंधेरे में के पीछे एक अन्य घटना भी थी जिसका उल्लेख हरिशंकर परसाई ने किया है। मुक्तिबोध ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक पुस्तक लिखी थी, भारत इतिहास और संस्कृति, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस पुस्तक को जब्त कराने के आंदोलन में असंतुष्ट प्रकाशक, बिके हुए पत्रकार और जनसंघ के लोग भी शामिल थे। शायद यही कारण है अंधेरे में के प्रोसेशन दृश्य के पीछे रहा है। उस घटना में वह अत्यधिक उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री राज्यपाल से भी मिलने का प्रयास किया था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि देश में फासिस्ट ताकतें बढ़ गई हैं। वह कहते थे कि पार्टनर, या मेरी या तुम्हारे पुस्तक का मामला नहीं है, वे आपके कलम छीन लेगी, आपके गले को दबाकर आपको बोलने नहीं देगी। अंधेरे में कविता उन्हीं दिनों पूरी हुई थी। परसाई जी ने लिखा है कि वह आदमी चट्टान जैसा था, लेकिन इस घटना ने उसके भीतर भय और असुरक्षा की भावना भर दी थी। इस पूरे कांड को व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखकर वह बेहद त्रस्त थे। कहते थे, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जा रही है, गला दबाकर आवाज घोटी जा रही है। इन कामाबंद मुक्तिबोध के समकालीन कवि शमशेर सिंह ने इस कविता के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है, और भावनाओं के अनेक गुंफित स्तरों पर। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। उसके बिंब और प्रतीक और संकेत, संदर्भ शब्द और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजे हमारी भावनाओं में भर जाते हैं। इसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व वाल्ट व्हिटमैन और मायकोवस्की के शिल्प और शक्ति से टक्कर लेता है, और अपनी जमीन पर अप्रतिहत और अद्वितीय रहता है। अंधेरे में कविता में जो अभिव्यक्ति की तलाश है वह सिर्फ अनुभूति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की तलाश न होकर एक महत्वपूर्ण ईमानदार, जनपक्षधर और क्रांतिकारी व्यक्तित्व की भी तलाश है। काव्य नायक अपनी मध्यवर्गीय सीमाओं, द्वंद्वों और कमजोरियों के कारण जो नहीं बन सका और जिसका आकांक्षी था वैसे पूर्ण क्रांतिदर्शी व्यक्तित्व की तलाश इस कविता में लगातार चलती है, जो शुरू से अंत तक बार बार उपस्थित होता रहता है और जिसके व्यक्तित्व का निरंतर विस्तार होता जाता है, जो निकलता तो खोर से है किंतु समाहित विशाल जन समुदाय में होता है। भारत भूषण अग्रवाल के शब्दों में वह कवि का आदर्श स्वर है। मुक्तिबोध ने अपनी कविता में भावाभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की नई प्रणाली तलाशी और विकसित की है। उन्होंने इस कविता में फैंटेसी की शैली अपनाई है। कला के तीन चरण की चर्चा के क्रम में उन्होंने फैंटेसी पर विस्तार से विचार किया है। अंधेरे में जो स्वप्न कथा है वह फैंटेसी का ही एक रूप है। डॉक्टर नामोल सिंह ने लिखा है कि मुक्तिबोध की दृष्टि में कविता के अंतर्गत फैंटेसी के प्रयोग की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि लेखक वास्तविकता के प्रदीर्घ चित्रण से बच जाता है। कहना ना होगा कि स्वप्न शैली में कथा कहने के कारण अंधेरे में कविता में काफी मितव्ययिता आ गई है तथा वर्णन के अनावश्यक विस्तार से अपने आप भी निजात मिल गई है। इंटरेट कामावन कविता के नए प्रतिमान। जबकि नंदकिशोर नवल का मानना है कि इंटरेट कामा इस तरह फैंटेसी का इस्तेमाल इस कविता में किसी काव्य कौशल के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि वह स्थितियों से उत्पन्न कवि के मनोदशा का स्वाभाविक परिणाम है। इंटरेट कामावन अंधेरे में एक विश्लेषण। मुक्तिबोध की काव्य भाषा भी उनके अनुभव की भांति नवीनता लिए है। उनकी भाषा प्रचलित भाषा नहीं है, वो अपनी भाषा का लगातार संस्कार करते चलते हैं। कभी कभी उनकी भाषा अपरिचित और भयावह शब्दों से भरे हुए दिखाई पड़ती है, जो कथ्यगत भयावहता के कारण है। मुक्तिबोध पितृपक्ष से मराठी और मातृपक्ष से हिंदी भाषी थे। इस भाषिक द्वंद्व के कारण उनका कवि कर्म काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध की काव्य भाषा के बारे में दो बातें की हैं। एक, मुक्तिबोध की कविता जनवादी कविता है, लेकिन कविता की भाषा जनवादी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जनवादी भाषा में लिखी गई कविता जनवादी हो ही। कवि अपनी भाषा की तलाश स्वयं करता है। दूसरी, मुक्तिबोध की भाषा में अजीब खुरदरापन है जो अपना अनुकर्ता नहीं पैदा करता पर मसृणता की रोमानियत से बचाता भी है। इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी उनकी अपनी मातृभाषा मराठी पर भी है, इसीलिए इसे हिंदी और मराठी का हाइब्रिड भी कहा जा सकता है। संभवतः ऐसी भाषा में जनक्रांति की कर्कशता को रूपायित करना संभव है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इस कविता की भाषा सामान्य पाठक की समझ से परे है। संस्कृत निष्ठ समास बहुल जटिल शब्दावलियों, विजातीय शब्दों के संयोजन, दुरूह और अपरिचित शब्द प्रतीकों, अनेक असंबद्ध वर्णनों एवं फैंटेसी के अतिशय प्रयोगों के कारण इस कविता को समझना किसी तिलिस्म का रहस्य जानना है। इसलिए प्रत्येक आलोचक इस कविता का एक अलग निष्कर्ष निकालता है। वैसे मुक्तिबोध ने साहित्य किसके लिए का जवाब देते हुए जनता का साहित्य और जनता के लिए साहित्य का अंतर पहले स्पष्ट कर दिया था। मुक्तिबोध की तमाम कविताएं प्रबुद्ध पाठकों के लिए हैं। यह भी